नमस्कार भारत, 8 अप्रैल दिन शुक्रवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त के बयान से भारत पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया को लगा झटका। भारत ने बयान को खारिज किया, लेकिन विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा।
पता नहीं मोदी जी को वर्ल्ड लीडर बनने का एकाएक शौक हो गया, और बिना जो कहा करते थे कि हम सर काट के लाएंगे, वो केक काटने पाकिस्तान चले गए।
असम में चुनावी सरगर्मियों के बीच भी बारपेटा के हिंदू कर रहे हैं मुश्किलों का सामना।
मूल जो समस्या है, डाउटफुल वोटर जो बना रहा है, उन लोगों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, और नाम में आता है ये शायद बंगाली होगा, फिर उनको नोटिस भेजते हैं।
ओबामा मोदी संवाद को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे ब्रजेश उपाध्याय अपनी वाशिंगटन डायरी में। होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि भारत के साथ शांति प्रक्रिया निलंबित है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब पठानकोट हमले की जांच के लिए भारत आई पाकिस्तानी टीम स्वदेश लौट चुकी है, और उसके इस दौरे को लेकर कई विवादास्पद खबरें मिल रही हैं। बासित ने कहा कि अभी तक दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच होने वाली बैठक तय नहीं हो पाई है। वहीं भारत ने बासित के इस बयान का खंडन किया है कि पाकिस्तानी टीम किसी आदान प्रदान के तहत भारत नहीं आई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये दौरा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों देशों के एक दूसरे के यहाँ जाने पर सहमति बनी थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों यूनिवर्सिटी छात्रों ने एक धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में रैली निकाली है। कानून की पढ़ाई कर रहे निजामुद्दीन समद की बुधवार रात कुछ लोगों ने चाकू और गोली मारकर हत्या कर दी। पिछले साल इसी तरह की घटनाओं में कट्टरपंथियों ने कम से कम 5 धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगरों की हत्या कर दी थी। बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसनुल हक इनू कहते हैं,
The murder of Mr. Nazimuddin Samad is another incident of the
निजामुद्दीन समद की हत्या देश में सक्रिय चरमपंथियों की एक और वारदात है। वो लोग धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले लोगों की हत्या कर रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है, हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन हम पता लगा कर रहेंगे कि इस तरह की हत्याओं के पीछे कौन है। ये थे बांग्लादेशी सूचना मंत्री हसनुल हक इनू के शब्द। सीरिया के विद्रोही बलों ने उत्तरी सीरिया में रणनीतिक रूप से एक अहम शहर से इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों को हटने के लिए मजबूर कर दिया है। कई दिनों तक चली लड़ाई के बाद सीरियाई बागियों को ये कामयाबी मिली है। इस शहर का नाम अलराय है, जो एलेपो प्रांत में पड़ता है। इस शहर को आईएस का गढ़ माना जाता था, और ये सीरिया को तुर्की से जोड़ने वाली सीमा चौकी के पास है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने दिवंगत पिता के बनाए एक विदेशी ट्रस्ट से फायदा हुआ है, और इसका ब्यौरा पनामा पेपर्स लीक में भी है। एक इंटरव्यू में कैमरन ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने और उनकी पत्नी ने 2010 में $42,000 से ज़्यादा के शेयर बेचे। कैमरन ने कहा कि उन्हें जितना भी फायदा हुआ उस पर उन्होंने टैक्स दिया है, और ये कहना सही नहीं होगा कि ये ट्रस्ट टैक्स चोरी के उद्देश्य से बनाया गया था। इस मामले को लेकर विपक्ष कैमरन की आलोचना कर रहा है। और बेल्जियम के अभियोजकों ने ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर हमले के दौरान जीवित बचे एक संदिग्ध हमलावर की नई फुटेज जारी की है, जिसमें दिखाया गया है कि वो हमले की जगह से निकलते वक्त कौन से रास्ते से जा रहा है। बीबीसी समाचार।
तारीख 8 अप्रैल दिन शुक्रवार। नमस्कार भारत में, अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज प्रियदर्शी का। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भारत और पाकिस्तान के बनते बिगड़ते रिश्तों से। नरेंद्र मोदी जब एकाएक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान जा पहुंचे, तो लोग इसकी तुलना वाजपेयी युग से करने लगे। लगा जैसे दोनों देशों के रिश्तों का नया दौर शुरू हो सकता है। लेकिन फिर पठानकोट हमला हुआ, और भारत ने इसके लिए पाकिस्तान स्थित चरमपंथी संगठनों पर ठीकरा फोड़ा। फिर रिश्तों में कुछ दिनों के लिए आई गर्माहट ठंडी पड़ गई। हाँ, एक बात जरूर हुई कि दोनों देश बातचीत जारी रखने पर जोर देते रहे। पठानकोट हमले की जांच में पाकिस्तान ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया, और फिर एक दिन पाकिस्तानी जांच अधिकारियों की टीम भारत पहुंच गई। भारत में विपक्ष ने सरकार को घेरा, और अब भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने जैसे अच्छे रिश्तों की आस लगाए बैठे लोगों पर ठंडा पानी डाल दिया है। बासित ने कहा कि दोनों देशों के बीच शांति प्रक्रिया फिलहाल स्थगित है। उन्होंने ऐसे भी संकेत दिए कि भारतीय जांच अधिकारियों को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि भारत ने दावा किया कि जांच अधिकारियों का एक दूसरे के यहां जाने को लेकर सहमति बनी थी। पूरी रिपोर्ट सुनिए प्रभात पांडे से।
क्या पठानकोट हमले की जांच के लिए भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम पाकिस्तान जाएगी? भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित से कल नई दिल्ली में जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा,
दिस होल इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अबाउट द क्वेश्चन ऑफ रेसिप्रोसिटी इन माय व्यू।
मेरे विचार में इस पूरी जांच में आदान प्रदान का सवाल नहीं है, बल्कि इसमें सहयोग बढ़ाने की बात है।
पठानकोट में जनवरी में हुए हमले की जांच के लिए पाकिस्तान का संयुक्त जांच दल 27 मार्च को भारत आया था। इस दल के दौरे पर भारत के कई राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए थे। ऐसे में बासित का ये बयान आया तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर दिया। इस बयान में कहा गया, हमने पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमले की जांच के लिए भारत आई संयुक्त जांच टीम पर पाकिस्तान उच्चायुक्त का बयान देखा है, जिसमें पारस्परिकता का हवाला दिया गया है। मंत्रालय इस मामले में साफ करना चाहता है कि JIT के दौरे से पहले 26 मार्च 2016 को भारतीय उच्चायुक्त ने औपचारिक तौर पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को सूचित किया था कि सहमति इस शर्त पर बनी है कि ये रेसिप्रोसिटी पर आधारित होगा और मौजूदा कानूनी प्रावधानों के मुताबिक उनका पालन किया जाएगा। पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने पठानकोट मुद्दे के अलावा शांति प्रक्रिया, जम्मू कश्मीर और जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को लेकर भी जो बयान दिया, उसके बाद भारत के विपक्षी दल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं। बासित ने कहा कि उन्हें लगता है कि फिलहाल शांति प्रक्रिया स्थगित है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के विवाद को दूसरे द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर आपसी अविश्वास की जड़ में बताया। मसूद अजहर को लेकर उन्होंने चीन के रुख को सही बताया। बासित के बयान के बाद कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा,
कांग्रेस का ये लगातार ये रहा है कि पाकिस्तान जब तक ये अश्योर नहीं करता है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ टेरर एक्टिविटी में बंद नहीं करता है, तब तक उससे बात करने का कोई ये नहीं है। और उसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे असर पड़ा था, पाकिस्तान आइसोलेट हुआ था, एक कोने में पाकिस्तान को डिप्लोमेसी से UPA की सरकार ने पुश किया था, मगर पता नहीं मोदी जी को वर्ल्ड लीडर बनने का एकाएक शौक हो गया या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव उन पर पड़ा इतना कि वो बेचैन हो गए, और बिना जो कहा करते थे कि हम सर काट के लाएंगे वो केक काटने पाकिस्तान चले गए।
वहीं विदेश मामलों के जानकार पाकिस्तान के उच्चायुक्त के बयानों को भारत पाक संबंधों में पाकिस्तानी सेना के दखल के तौर पर देख रहे हैं। पूर्व राजनयिक विवेक काटजू कहते हैं,
पाकिस्तान की सेना नहीं चाहती कि भारत से संबंध अच्छे हो, ये उसका हमेशा से रवैया रहा है। हम मान के भी चलें कि नवाज शरीफ जानते हैं कि उनकी देश की प्रगति पूर्ण रूप से नहीं हो सकती जब तक कि भारत से संबंध अच्छे नहीं हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी फौज जो उन पर हावी है सुरक्षा नीति के हवाले से इसकी इजाजत देती है? ये जो गुट है, लश्कर है या लश्कर ए तोयबा है या जैश ए मोहम्मद है, इनका पाकिस्तानी सेना ने इस्तेमाल किया है। कौन नहीं जानता है कि मसूद अजहर आतंकी है।
भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त के बयान के बाद कई सवाल उठे हैं, और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इस रुख के बाद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की उम्मीद की जा सकती है?
तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर उठे सवाल। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित के बयानों को लेकर हमारे सहयोगी इकबाल अहमद ने पाकिस्तान में राजनीतिक और सैन्य मामलों की विश्लेषक आयशा सिद्दीका से बात की और सबसे पहले पूछा कि वो इन बयानों को कैसे देखती हैं।
कोई हाई कमिश्नर जो है वो एक आला अफसर होता है, सरकारी अफसर, लेकिन उसका वो ग्रेड नहीं है कि वो फैसले ले सके। मेरे ख्याल में वो जो एक्सप्रेस कर रहा है, उन्होंने अपनी ये बात की है कि लगता है कि बात चल नहीं रही है। मेरे ख्याल में एक तरह से वो इस चीज का एक्सप्रेशन है कि बात कहीं वाकई जाके कहीं फंस है, और खास करके ये जो कुलभूषण यादव जिससे पाकिस्तान ये कहता है, पाकिस्तान सरकार ये कह रही है कि वो स्पाई हैं और वो टेररिज्म की कार्रवाइयां कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये जो जे आई टी का मसला है पठानकोट के हवाले से, तो मेरे ख्याल में ये एक एक्सप्रेशन है कि कुछ सोर्सेज जो हैं पाकिस्तान के अंदर कुछ वो नहीं चाहती कि बात जो है उसमें कुछ रखा है या बात आगे बढ़ सकती है।
क्या आप ये कह रही हैं कि ठीक है उन्हें फैसले लेने के अख्तियारात तो यकीनन नहीं हैं, लेकिन क्या ये भी है कि जो पाकिस्तान की वजीर खारजा है या पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है या पाकिस्तान की पूरी हुकूमत है, उनकी सोच और अब्दुल बासित साहब ने जो बातें कहीं उसमें थोड़ा तजाद है, थोड़ा फ़र्क है?
मेरे ख्याल में भी पाकिस्तानी जो सियासी हुकूमत है उसमें वो तो ये नहीं सोच रही, वो तो चाहती है कि बात आगे बढ़े, लेकिन जहाँ तक मेरे ख्याल में जो फौज का ताल्लुक है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज को देखते हैं, मेरे ख्याल में वो खास करके जो कुलभूषण यादव का किस्सा हुआ है उससे उसको देख के वो वहाँ जरा गुस्सा है कुछ, वो नहीं समझते कि बात ने अभी कुछ आगे रखा है जब तक कश्मीर की बात ना हो, थोड़ी सी बेचैनी का भी इसमें इजहार है। ये जो अब्दुल बासित ने बात की वो बेचैनी के हमने बात बढ़ाने की कोशिश की, जीआईटी जो है वो भेजी और हमने यहाँ तक एग्री किया कि चलो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन साथ साथ ये जो गुफ्तगु है जो फॉरेन सेक्रेटरी की वो बात की जाए, क्योंकि फॉरेन के हिसाब से जो फॉरेन सेक्रेटरी की टॉक है उसमें कश्मीर का जो जिक्र है वो बिल्कुल आना चाहिए और वो आएगा, और वो जो एक शक है, शक और शुबा है उसका इजहार करता है अब्दुल बासित साहब का बयान।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तानी टीम जब आई थी तो पहले ही ये तय हो चुका था कि ये रेसिप्रोसिटी के की बुनियाद पर होगा। तो इन हालात में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से अब कोई, या उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कोई बयान आएगा अब्दुल बासित साहब की बयान की मुखालफत में या कोई सफाई में?
फॉरेन ऑफिस का तो शायद कुछ स्टेटमेंट आ चुका है, इसमें उन्होंने इस शक का इजहार जो है इसमें उन्होंने यही कहा है कि जी जब जीआईटी गई थी तो हिंदुस्तानी सरकार ने कोई ज्यादा कोऑपरेट नहीं किया, तो उसी बयान आया है, तो मेरे ख्याल में इससे बढ़ के अभी या तो कोई कॉन्ट्रोडिक्शन को मेजर कॉन्ट्रोडिक्शन जो है मेरे ख्याल में फॉरन ऑफिस की तरफ से नहीं आएगी। वो यही कहेंगे कि पाकिस्तान तो चाहता है कि बात बढ़ाए लेकिन हिंदुस्तान कोऑपरेट नहीं करेगा।
आयशा सिद्दीका से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी इकबाल अहमद।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
असम में बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ का मुद्दा चुनाव में छाया हुआ है, लेकिन चुनावी सरगर्मी के बीच लोअर असम खासकर बारपेटा में कुछ हिंदू ऐसे हैं जिनकी दिक्कतों की ओर कोई राजनीतिक दल ध्यान नहीं दे रहा है। इनमें से कुछ के पास वोट देने तक का अधिकार नहीं है, वो खुद को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं। इन्हीं लोगों से बात की है बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने।
मैं इस वक्त बारपेटा रोड के आमतला में हूँ और बारपेटा रोड लोअर असम की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बंगाली बहुल इलाका है और बंगाली बहुल इलाके में ज़्यादातर रहने वाले बंगाली हिंदू हैं जो यहाँ कई सालों से रहते आ रहे हैं। असम में एक समस्या जो इन्हें झेलनी पड़ रही है वो ये है कि बांग्लादेशी का जो एक टैग इनके ऊपर लगा दिया गया है और उसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं जो बंगाली समाज के हैं जिन्हें डिटेंशन कैंप में रखा गया है, यानी जेल में रखा गया है। लोग परेशान हैं, मेरे साथ नौजवान खड़े हैं जो सारा असम बंगाली यूथ छात्र फेडरेशन के नौजवान लड़के हैं इस इलाके के।
ये प्रॉब्लम है खाली एक मतलब असम का प्रॉब्लम है,
सर्विस नहीं कर पाएगा कोई, सरकार का कोई सुविधा नहीं पाएगा, वो कुछ नहीं पाएगा, रात को आएगा पुलिस धर के लेकर जेल में बोलता है।
तो आप कह रहे थे जेल की बात, जहाँ तक तो मेरे साथ एक नौजवान है जो अभी जेल से आए हैं छूटकर।
मनीकट जो हमारे घर में हमारा बीवी है, हमारा बच्चा है, माँ है, भाई है, सबका नाम है भूट में, हमारा नाम भी है भूट में, कागज पत्र डॉक्यूमेंट जैसा है सब वैसे है।
तो फिर जेल क्यों ले गया?
हमको बोला है तुमको, तुम बांग्लादेशी है, तुम्हारा नोटिस आया है, 50 साल हो गया हमारा बरपेटा रोड।
एनआरसी का फुल फॉर्म है, नेशनलिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
एनआरसी करीबन 1951 में एक बार सरकार की तरफ से असम में तैयार किया जा रहा था, लेकिन उस टाइम में बहुत दिक्कत आया और एनआरसी का ऑफिशियल लोग ने रिपोर्ट दिया यहाँ पर दंगा फसाद शुरू हो गया, इसीलिए हम लोग एनआरसी कंप्लीट नहीं कर सके। आज फिर 2015 में एनआरसी का काम शुरू किया, यहाँ पर खिलौंजिया बोल के, जो खिलौंजिया को सुरक्षित करना है।
खिलौंजिया कौन होते हैं?
खिलौंजिया उन लोग बोलता है जो मूल निवासी होते आसाम का, वो बोल रहा है उन लोग खिलौंजिया है। मूल जो समस्या है डाउटफुल वोटर जो बना रहा है उन लोगों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मनगरण जिसको भी नाम में आता है जो ये शायद बंगाली होगा, उस शायद हिसाब से डी लगाता है, फिर उनको नोटिस भेजते हैं।
शायद कैसे पता चलेगा? टाइटल से,
टाइटल से। जैसे सरकार हो, वो शाह हो, राय हो, अभी भी कोई पाकिस्तान से अगर आता है, वह पाकिस्तानी हिंदू जो आता है उन लोगों को यहाँ पर स्वागत करके और सिटीजनशिप दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर विदेशी हम लोगों को बनाया जा रहा है।
लेकिन अमित शाह ने यहाँ पे रैली में कहा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पूरी राजनीति असम की इसी पर चल रही है, बांग्लादेशी माइग्रेंट्स और इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर।
बांग्लादेशी बोल के असम का जितना चुनाव है ऐसा मैंने सब राजनीति चल रहा है।
ऐसा है कि कांग्रेस ने इतने साल शासन किया, स्टेट में भी रही, सेंटर में भी रही, कांग्रेस ने भी जो है वादे किए और उसके बाद चुनाव भी लड़े, केंद्र में भी सरकार में रही, स्टेट में भी रही, उसका रोल क्या रहा?
अभी कांग्रेस इतने 15 साल तक हम लोगों को ठगाता रहा, बोल रहा है कि देगा, लेकिन कांग्रेस का सरकार ने दिया है उन लोगों का कैबिनेट जो डिसीजन होता है वो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट में तब दिया जब उन लोगों का सरकार नहीं था। जब भाजपा का सरकार आया तब उन लोगों ने वो डिसीजन कैबिनेट डिसीजन भाजपा के सरकार को दिया। तो अभी भाजपा इसको लेकर राजनीति कर रहा है कि हम लोग अगर असेंबली में आते हैं तो फिर बाद में करेंगे। सर दोनों तरफ से राजनीति ही राजनीति चल रहा है और बलि का बकरा बन रहा है यहाँ का नॉर्मल हिंदू बंगाली लोग।
तो सुना आपने कि ये जो हिंदू बंगाली हैं जिनके पिता या उनके दादा परदादा जो स्वाधीनता की लड़ाई में भी शामिल रहे और वो आके बसे, कुछ तो वहाँ से डर कर भाग कर आए और इस वादे के साथ आए कि यहाँ पर उनको एक नागरिकता मिलेगी, यहाँ पर सम्मान की ज़िंदगी जी पाएंगे। इनका कहना है कि राजनीतिक दल चाहे जो भी रहें, उन्होंने कभी भी जो वादे थे, जो किए चुनावी वादे, वो कभी पूरे नहीं किए। सलमान रावी, BBC, बारपेटा रोड, लोअर असम।
और अब जान लेते हैं कि देश और दुनिया की किन हलचलों पर रहेगी हमारी नजर।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 9वें संस्करण की आज शुरुआत हो रही है। आज उद्घाटन समारोह होगा जबकि मुकाबले कल से शुरू हो जाएंगे। 29 मई तक चलने वाले इस मुकाबले में 8 टीमें 60 मैच खेलेंगी। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आज से 3 दिन का विश्व बांस सम्मेलन हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सम्मेलन के दौरान भारतीय बांस उद्योग को दुनिया भर में बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा होगी। JBT भर्ती घोटाला में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अजय चौटाला की पेरोल याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अजय चौटाला को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। और बांग्लादेश में एक और नास्तिक कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में आज धर्मनिरपेक्ष समूह राजधानी ढाका में प्रदर्शन करेंगे। और यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रभारी फेडरिका मोगेरिनी आज से अपना 2 दिन का इंडोनेशिया दौरा शुरू कर रही हैं।
पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो व्हाइट हाउस में एक डिनर के दौरान उन्हें राष्ट्रपति बराक ओबामा के बगल की सीट दी गई। दोनों नेता हंसते और बात करते देखे गए। उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसकी हवा भी किसी को नहीं लग पाई, लेकिन हमारे संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय ने कल्पना के घोड़े दौड़ाए और संवाद को शब्द देने की कोशिश की। सुनिए उनकी वॉशिंगटन डायरी।
व्हाइट हाउस में पिछले हफ्ते दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के नेता जब डिनर करने बैठे तो ओबामा जी के ठीक बगल वाली कुर्सी मोदी जी को दी गई। और इन दोनों की केमिस्ट्री का तो आपको पता ही है, एक पल में ही दोनों सर जोड़कर खुसफुस करने लगे। जाहिर है मीडिया वालों के पेट में दर्द हुआ। पाकिस्तानी मीडिया वाले मजाक कर रहे थे कि जरूर नवाज शरीफ की शिकायत हो रही होगी। इंडियन मीडिया वाले कह रहे थे कि मोदी पूछ रहे होंगे कहीं दौरे वौरे पर जा रहे हो या नहीं, मैंने तो तुम्हारा 7.5 साल का रिकॉर्ड 2 साल में ही तोड़ दिया है। पता तो किसी को नहीं चल पाया कि क्या बातें हुई दोनों ही नेताओं में, तो चलिए थोड़ी पतंगबाजी हम भी कर लेते हैं। तो कुछ ऐसी हुई बातचीत। नरेंद्र मोदी, तो गुरु अब तो बस गिने चुने दिन रह गए व्हाइट हाउस में, भारत का एक और चक्कर चाहो तो लगा लो। 15 अगस्त पर मेहमान बनकर आ जाना, मन की बात करेंगे, सेल्फी वेल्फी लेंगे, मजा आएगा। बराक ओबामा, अरे नहीं नहीं, अभी तो क्यूबा और अर्जेंटीना से लौटा हूँ, ज़रा वहाँ डांस कर लिया तो लोगों की सुलग रही है यहाँ, और अभी तो सऊदी अरब, ब्रिटेन और जर्मनी के दौरे पर जा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी, तो कौन आ रहा है तुम्हारे बाद? अपनी हिलरी जीत जाएगी ना, कहो तो कैंपेनिंग के लिए आ जाऊं, जान डाल दूंगा। ओबामा, देखो उम्मीद तो है, वैसे कहीं ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवार बन गया तो कुछ कहा नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी, हाँ काफ़ी सुना है उसके बारे में, मेरी तारीफ भी कर रहा था कहीं पर, और मेरा नारा भी चुरा लिया है उसने। मैंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, वो कह रहा है अमेरिका को फिर से महान बनाएगा। बराक ओबामा, हाँ तुम दोनों की सोच भी काफ़ी मिलती जुलती है, तुम्हारी तरह वो भी रॉक स्टार है, शोमैन है, बस तुम्हारी तरह अपने नाम की कढ़ाई वाला सूट नहीं पहनता। नरेंद्र मोदी, तुम भी खींच लो टांग, वो बेवकूफ़ डिज़ाइनर के चक्कर में पड़ गया था मैं, लेकिन देख लो उसकी नीलामी से भी मैंने पैसे कमा लिए। तुम्हारी तरह थोड़ी कि पाकिस्तान पर पैसे लुटाता रहूं और बदले में वहां से ढेला भी ना मिले, तुम्हारे पास तो बिजनेस सेंस है ही नहीं। बराक ओबामा, ट्रंप भी यही कहता है मेरे बारे में, मैं तो कह ही रहा था तुम दोनों की खूब जमेगी, दूसरे भी कई मामले हैं जिन पर तुम दोनों की सोच मिलती जुलती है, और सुना है अमरीका में तुम्हारे कई चाहने वाले ट्रंप को सपोर्ट भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अच्छा वो रहने दो, ये बर्नी सैंडर्स क्या चीज़ है, न कपड़े पहनने का सलीका, बाल कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। मोदी जी अपने बालों और दाढ़ी पर हाथ फिराते हैं। बराक ओबामा, हाँ कुछ कुछ तुम्हारे केजरीवाल जैसा है, बस मफलर नहीं लपेटता। नरेंद्र मोदी, केजरीवाल जैसा है तब तो मेरे लिए मुसीबत पैदा करेगा, बिजली पानी मुफ्त देने का ऐलान करेगा, बिजनेस वालों के खिलाफ बोलेगा और करेगा धरेगा कुछ नहीं। बराक ओबामा, सैंडर्स भी सब कुछ मुफ्त देने की बात कर रहा है, हेल्थ फ्री, एजुकेशन फ्री, वॉल स्ट्रीट तोड़ो, नौकरी वापस लाओ, तुम तो जानते ही हो ये सब बातें चुनाव में कहने को अच्छी होती हैं, मैंने भी कही, तुमने भी कही, लेकिन करना कितना मुश्किल होता है। नरेंद्र मोदी, अरे हाँ मैंने भी कहा था कि विदेशों से सारा ब्लैक पैसा वापस ले आऊँगा, लेकिन गले की हड्डी बन गया है। बराक ओबामा, दिक्कत यह है कि सैंडर्स इस कैपिटलिस्ट देश में सोशलिस्ट पॉलिसी की बात कर रहा है, अंदर से मैं भी सोशलिस्ट हूँ और बल्कि था, लेकिन चुनाव के समय तो मुझे खुलकर कहना पड़ा था कि मैं सोशलिस्ट नहीं हूँ, वरना कभी जीत नहीं सकता था यहाँ। ये तो खुलकर कह भी रहा है कि वो सोशलिस्ट है, और ये बेवकूफ़ कॉलेज में पढ़ने वाले खींचे चले आते हैं उसकी रैलियों में, यहाँ कोई सोशलिस्ट कभी नहीं जीत सकता। नरेंद्र मोदी, अरे इन नौजवानों की तो बात ही मत करो, या तो फ़ोन में घुसे रहते हैं या फिर जो भी सपना दिखाने लगे उसके पीछे हो लेते हैं। तुम्हारी रैलियों में भी कितने नौजवान आते थे, मेरी रैलियों में भी पूरे जोश में नजर आते थे ये लोग, और सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकते। बराक ओबामा, सैंडर्स के चाहने वालों का भी यही हाल है, एकदम भक्त बन गए हैं। नरेंद्र मोदी, भक्त? बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी, ठीक है चलो रहने दो, अब जरा न्यूक्लियर श्यूक्लियर की बात कर लेते हैं, वैसे भी तुम पाकिस्तान का तो कुछ करोगे है नहीं, लंबी लंबी बातें करोगे, झेलना तो हमें पड़ता है, सुना है और हेलीकॉप्टर भी दे रहे हो। बराक ओबामा, अरे तुम भी कहाँ के लिए बैठे, वो देखो वो चीन वाले हमें घूर रहे हैं। तो जनाब बातचीत यहीं रुक गई और उसके बाद भाषणबाजी का दौर शुरू हो गया। और हाँ, आप मोदी जी, ओबामा जी, केजरीवाल जी, ट्रंप जी, सैंडर्स जी, हिलरी जी, किसी के भी भक्त हों, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये तो बस यूं ही आपके साथ बैठकर थोड़ी चुटकी ले ली। ब्रजेश उपाध्याय, BBC, वॉशिंगटन।
तो बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत का ये अंदाज आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। ये थी ब्रजेश उपाध्याय की वॉशिंगटन डायरी।
खबर सच है अगर BBC पर है।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। अशोक कुमार अखबारों के पन्ने पलटकर स्टूडियो में आ चुके हैं। जी अशोक
जी। पंकज जी, आज के ज्यादातर अखबारों में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित का बयान छाया हुआ है। द हिंदू के हेडलाइन है, पाक एनवॉय अक्यूज इंडिया ऑफ सस्पेंडिंग डायलॉग, यानी पाकिस्तानी दूत ने भारत पर वार्ता को निलंबित करने का आरोप लगाया है। तो वहीं अमर उजाला की हेडलाइन है, पठानकोट पर घिरे पाक ने शांति वार्ता पर ब्रेक लगाया, यानी आपस में एक दूसरे की खूब चल रही है आरोप प्रत्यारोप। नवभारत टाइम्स ने इसे पठानकोट पर नापाक अड़ंगा हेडलाइन दी है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, पाक एनवॉय किल्स पीस प्रोसेस बट हिज गवर्नमेंट सेज इट इज स्टिल ऑन, यानी पाकिस्तानी दूत ने तो शांति प्रक्रिया की हत्या कर दी लेकिन उनकी सरकार कहती है कि अभी जारी है,
कोशिशें जारी है, अभी चल रही है, जो कल विदेश मंत्रालय ने भी कहा
जी। इसके अलावा IIT की फीस बढ़कर दोगुनी होने की खबर आज के सभी अखबारों में है। अमर उजाला कहता है कि अभी तक जो फीस सालाना 90,000 थी वो अब बढ़कर 2,00,000 हो गई है। वहीं नई दुनिया कहता है कि फीस बढ़ी है लेकिन कुछ सौगातें भी दी गई हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ साथ विकलांग छात्रों की पूरी फीस माफ होगी, जबकि सालाना 5,00,000 आमदनी वाले जो परिवार हैं उनसे आने वाले छात्रों को फीस में 1/3 की रियायत मिलेगी। इसके अलावा गाजियाबाद में बसपा से राज्यसभा सांसद नरेंद्र कश्यप की गिरफ्तारी की खबरें आज दिल्ली से छपने वाले लगभग सभी अखबारों में हैं। हिंदुस्तान में ये खबर सबसे ऊपर सचित्र छपी और सुर्खी है, बहू की मौत के मामले में बसपा सांसद गिरफ्तार। अमर उजाला लिखता है कि दहेज हत्या के आरोप में सांसद कश्यप पत्नी और बेटे के साथ गिरफ्तार। उधर ये भी कहा गया है कि उनका छोटा बेटा और 2 बेटियां फरार हैं। जनसत्ता लिखता है कि मृतक जो उनकी बहू हैं हिमांशी, उनके पिता ने सांसद कश्यप पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। जनसत्ता में सबसे नीचे खबर है, एशिया की सबसे शक्तिशाली महिला कारोबारी हैं नीता अंबानी। अखबार के मुताबिक फोर्ब्स ने इस बारे में एक सूची तैयार की है जिसमें भारत की 8 महिलाओं के नाम हैं। SBI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरुंधति भट्टाचार्य इसमें दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन पहला स्थान उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को मिला है।
और IPL में जो टीम का कार्यभार है वो सब नीता अंबानी ही।
हाँ, इसके अलावा एक खबर और, केजरीवाल गेट्स बेल इन जेटली केस, यानी जेटली को का जो केस था उसमें केजरीवाल को मिल गई है जमानत। ये खबर हिंदुस्तान टाइम्स समेत कई अखबारों में है। दैनिक जागरण लिखता है कि मामला आपराधिक मानहानि का है जो जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ दायर किया था। आपको याद होगा कि DDCA में जो भ्रष्टाचार के आरोप केजरीवाल ने लगाए थे अरुण जेटली के खिलाफ, उसके बाद जेटली ने ये मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कुमार आपका। ये थी अखबारों की समीक्षा और अब खेल समाचारों का समय है रजत चान्ना के साथ।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ रजत चान्ना। आज से हो रही है IPL 9 की शुरुआत और एक बार फिर क्रिकेट का रोमांच होगा चरम पे। आज मुंबई के वर्ली में ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन होगा। इसमें बॉलीवुड के कई सितारे और अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार हिस्सा लेंगे। इस समारोह के आयोजन में अमेरिकी गायक क्रिस ब्राउन भारत में पहली बार परफॉर्म करेंगे। उनके साथ अमेरिकी बैंड मेजर लेजर, इंग्लिश रैपर फ्यूज ओडीजी और जमैका अमेरिका मूल के रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट नेला थॉरबॉर्न भी मंच पर नजर आएंगे। कार्यक्रम में बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह, जैकलिन फर्नांडिस, कैटरीना कैफ और योयो हनी सिंह भी लोगों का मनोरंजन करेंगे। पूर्व भारतीय खिलाड़ी निखिल चोपड़ा का मानना है कि खेल और मनोरंजन से भरपूर होगा इस बार का IPL।
मुकाबला बहुत कठिन होने वाला है, लगभग सभी टीमें बराबर हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये टीम अच्छी है वो टीम अच्छी है, क्योंकि बहुत फेरबदल किया गया है इस टीम में और ओपनिंग सेरेमनी के क्या खेले।
इस सीजन का पहला मुकाबला 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और नई टीम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच मुंबई में खेला जाएगा। वहीं हॉकी में मलेशिया में जारी 25वें सुल्तान अजलान शाह कप में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया से मिली 5-1 से शर्मनाक हार। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत से ही दबदबा बनाया और 5वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर लिया। ब्लेक गोवर्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला गोल किया, लेकिन भारत ने जवाबी हमला किया और ड्रैग फ्लिकर रुपेंद्र पाल सिंह ने मौके का पूरा फायदा उठाया और बराबरी का गोल दाग दिया। लेकिन उसके बाद भारतीय खिलाड़ी ढीले पड़ते गए और ऑस्ट्रेलिया के लिए जैकब वेटिन, एंडी ऑक्टन, साइमन ओचार्ड और मैट गॉडेस ने गोल किए और मैच को बड़ी आसानी से जीत लिया। अगले मुकाबले में भारत 12 अप्रैल को पाकिस्तान से खेलेगा।
और अब हम आ चुके हैं कार्यक्रम के अंत में, समय है मुख्य समाचारों का।
BBC समाचार। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि भारत के साथ शांति प्रक्रिया निलंबित है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने उनके इस बयान का खंडन किया है कि पाकिस्तानी टीम जो पठानकोट हमले की जांच के लिए भारत आई थी वो किसी आदान प्रदान के तहत भारत नहीं आई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों यूनिवर्सिटी छात्रों ने एक धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ता निजामुद्दीन समद की हत्या के विरोध में रैली निकाली है। सीरिया के विद्रोही बलों ने उत्तरी शहर अल राय से इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। कई दिनों तक चली लड़ाई के बाद सीरियाई बागियों को ये कामयाबी मिली है और ब्रिटानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने दिवंगत पिता के बनाए एक विदेशी ट्रस्ट से फायदा हुआ और इसका ब्यौरा पनामा पेपर्स लीक में भी है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो उन्होंने फायदा हुआ उस पर उन्होंने पूरा टैक्स दिया है। BBC समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं खत्म होता है। स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने, पंकज प्रियदर्शी और अशोक कुमार को अनुमति दीजिए। अब से ठीक एक घंटे बाद 8 बजे विश्व भारती में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।